बताओ। अब यहाँ के काम तो डीसी एसपी मंत्री मुख्यमंत्री इन्होंने करना है, एक बस फोन करने की देरी है, काम हाजिर हो जाएगा तो आपको इतनी सुविधा मिल जाएगी समर्थ की शरण में आने के बाद। लेकिन ये बुरे थोड़े ही है, ये उसके दुश्मन थोड़े ही, मित्र हो गए उनके। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने कबीर परमात्मा को एज ए ईस्ट पूजेंगे और बाकी ये सभी देव हमारे आदरणीय हैं, ये हमारे सारे काम दौड़ दौड़ के करेंगे, आपके आपके साथ रहेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि आप समर्थ के बच्चे हो। प्रधानमंत्री का कोई रिलेटिव यहाँ आवे फिर देखो एसपीडीसी कैसे हाजिरी लगाओ डेली उसके सामने। तो कहने का भाव ये है कि ये बुरे नहीं हैं, हमारे जितने भी देवता हैं ये हमारे साथी हैं, ये अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन हम इनको तंग करा करते हैं। अब जैसे कोई हमारा कार्य होना है मुख्यमंत्री से और हम अप्लीकेशन लाते हैं बार बार डीसी के, वो डीसी का सिर में दर्द हो जाए, उसको बार बार कहता है मैं नहीं कर सकता इसको, आप मुख्यमंत्री जी के पास जाइए। और हम फिर उसी का अर्जी लगावा, जय हो तेरी, जय हो तेरी, आप करोगे जो करोगे, अब पड़ी रहेगी वो अप्लीकेशन, वो उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो हम गलती ये करते थे, जो हमारा कार्य समर्थ से होना था उसका हमें पता भी नहीं था और हम अर्जी लगाते रहे इन देवताओं का, ये ना कुछ कर सके थे ये, और दुखी हुआ करते थे कि ये मैं कर नहीं सकता, मेरे सामने ये रोज हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है द्वार पा के। तो इस प्रकार हम अज्ञानता से अपना टाइम भी वेस्ट करते थे और उस लाभ से भी वंचित रह जाते थे जो भगवान से मिलना होता है। तो जब पतिव्रता पद पर हम आ जाएंगे, जैसे पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर में सुरत परीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने पति के घर जाती है, फिर वापस अपने माता पिता के घर आ जाती है, तो वहां वो अपने परिवार में रहती है, लेकिन ऊपर से आवभाव बिल्कुल सबसे बात करती है, खाना खाती है, सारी सेवा करती है, झाड़ू बुहारा करती है, लेकिन अंदर से कसक उसकी अपने पति के अंदर सुरती हरदम बनी रहती है, उसके अतिरिक्त वो किसी में सुरती लगाती नहीं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो पतिव्रता पति से राती, राती माने उसके से लीन है, आन पुरुष नहीं भावे, अन्य व्यक्ति में उसकी रुचि बन ही नहीं सकती, एक गुण होता पति व्रता के अंदर, और बस पी हर में फिर भी सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगा है। तो ऐसे पद पर जब हम आ जाएंगे, हम यहां पीहर में रह रहे हैं और यहां सभी के साथ मिलजुल कर रहना होगा हमने, लेकिन हमारी जो अंतःकरण की जो स्थिति है, अंतःकरण के अंदर जो कशक है वो अपने कबीर पति के अंदर, उस समर्थ पति के अंदर अटूट बनी रहे। तो फिर जब हम यहां से जाएंगे संसार छोड़कर सीधा वहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी आशा जहां आशा था वासा होई, मन कर्म वतन सुमरिय सोई। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद जब हम परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी से भी आध्यात्मिक लाभ की इच्छा नहीं करेंगे, अगर हम कोई अर्जी लगाएंगे तो अपने पति को ही लगाएंगे, वो चाहे किसी से कुछ करवाए वो उसका काम होता है, किसी से भी करवाए वो समर्थ है, तो तब हम सफल होंगे। तो उस समय जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे, तो उस समय परमात्मा अपनी वाणी में आप ही हमें सतर्क करते हैं, जैसे पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, और समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। समर्थ झाड़ू देते चलते हैं कि कहीं मेरी प्यारी आत्मा के जीवन रूपी सफर में पाप रूपी काटा ना लग जाए, इसका दुख ना हो। तो पुण्य आत्माओं, जब हम परमात्मा की सतभक्ति करेंगे उससे हमारे पाप नाश हो जाएंगे और पुण्य शेष रह जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। जिस समय कहते हैं आपको सतनाम प्राप्त हो गया, उसी समय आपके पापों में आग लगानी शुरू कर देगा। जैसे 6 लाख टन घास फूस पड़ा हो सूखा, और कितनों क्षेत्रों का घेर रखा उसने, और एक माचिस की सीख लगा दी जाए, एक तिल्ली उसको फूक कर सहा कर देगी, और चलेगा तूफान, तेज हवा चलेगी, उसको फेंक देगा कहीं का कहीं, और वो स्थान क्लियर हो जाएगा। तो हमारा युगों युगों का, युगों युगों के पाप इकट्ठे संग्रहित हैं संचित कर्मों में। अब परमात्मा का यह सच्चा नाम और आपकी सच्ची लगन पतिव्रता पद एवं विचारणी भक्ति के कारण आपके पाप कर्मों के ढेर में आग लग जाएगी। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छया रे, प्रेम की पवन कर चतमंजन झलक तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, आत्मा और परमात्मा के मध्य जैसे सूर्य के बीच में बादल आ जाने से सूर्य का प्रॉपर जो प्रकाश है वो हम तक नहीं पहुंच पाता, और ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया हो, रात्रि होगी हो। तो पुण्यात्माओं, जब तेज हवा चलती है बादलों को इधर उधर फेंक देती है, तो फिर सूर्य का वो तेज जो का तू आपको दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार युगों युगों के पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ी हुई है, इस सतनाम और सच्ची श्रद्धा और लगन से भक्ति करने से वो ऐसे हट जाएंगे, वो बादल छट जाएंगे पाप के बादल। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छया रे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन चलेगी, परमात्मा की भक्ति प्रारंभ करोगे। प्रारंभ में तो इतना आनंद नहीं आता भक्ति में, क्योंकि हमारे पाप कर्म योगों योगों के संग्रहित हैं और हमें प्रभावित कर रहे हैं। प्रारंभ में तो इस भक्ति के ऊपर धक्के से लगाना पड़ता है जीव को, इतने मंत्र तो करने ही पड़ेंगे, इतने मंत्र तो आपने करने ही पड़ेंगे, आरती भी करनी पड़ेगी, नित्यनेम भी करना पड़ेगा, रमणी भी करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में आपको धक्के से लगाना पड़ता है, और आप ना चाहते हुए भी शुरू कर देते हो, क्योंकि आपने स्वस्थ होना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है, और कुछ दिनों के बाद फिर देखना आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक नींद नहीं आएगी, और वही नाम बार बार जाप करना है, कितना आनंद आना शुरू होगा। तो आपके अंतःकरण में जो पाप कर्मों का जो दबाव था, जबर था, वो हटता चला जाएगा। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न भावे, जैसे जबर के वेग से भूख विदा हो जावे। जैसे किसी व्यक्ति को जबर हो गया बुखार, और उसको भोजन भी कड़वा लगता है, प्रतिदिन खाने वाला आहार भी मुंह को लगाने को दिल नहीं करता, उल्टी गिरने को हो जाती है, काजू किशमिश सेब संतरे कितने स्वादिष्ट फल और मेवा होते हैं, उस जबरग्रस्त व्यक्ति को वो भी कड़वे लगते हैं। न तो मनुखा दाख कड़वी है, न सेब और संतरे कड़वे हैं। बुखार ने, जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को इतना बिगाड़ दिया कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका तरीका क्या है? उन मीठी वस्तुओं को मीठा ही लगाने के लिए अब उस व्यक्ति को कोई कहे कि एक ग्रास भोजन खा ले, बहुत सुंदर बना रखा है, हलवा बनाया है, नहीं खा सकता, कुछ भी बनाए रखा हो, तो उसका कारण क्या है? कारण तो यह है कि बुखार ने उसके शरीर की व्यवस्था को खराब कर दिया, जो मीठी वस्तु को भी कड़वी महसूस कर रहा है। उसका इलाज क्या है कि जैसे मलेरिया हो जाता है और कुनीन सबसे कड़वी औषधि होती है, और ना चाहते हुए भी कड़वी लगो तो लगो वो खानी ही पड़ेगी। उस कड़वी औषधि के बार बार खाने से ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है वो, और उसके खाने से बुखार नाश हो जाएगा, और जो मीठी वस्तु कड़वी लगा करती वो मीठी लगनी प्रारंभ हो जाएगी, और जितना भी बुखार उतरता चला जाएगा उतना ही कुछ ना कुछ आहार प्राणी प्रारंभ कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार जिनके अंतःकरण के अंदर पाप कर्मों का जबर घना है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती, ना लगने दो इसको, ना चाहते हुए भी सुनो सत्संग को, न चाहते हुए एक बार भक्ति अवश्य शुरू करो। कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम को हिज भजोचे खज, और उल्टा सुल्टा उगेगा खेत पड़ा जो बीज। इसने चाहे प्यार तो भज लो शुरुआत में, और चाहे खज के भज लो, ये तो करना पड़ेगा। कबीर हरि के नाम को हिज भजोचे खज, उल्टा सुल्टा उग ही खेत पड़ा जो बीज। खेत में बीज डाल दिया उसने, उल्टा पड़ो चाहे सुल्टा वो उगे ही उगेगा। तो इस प्रकार हमने प्रारंभ में तो ऐसे आपने करना होगा, और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि आप भक्ति नहीं कर लोगे तब तक आपकी रुचि नहीं बनेगी, अन्य कार्य करने को भी दिल नहीं करेगा। तो जैसे जिनको पहले बुखार था उनको ये कहते थे कि महीने में एक बार आना पड़ेगा, दूर देश के भक्त आते हैं उनको 3 महीने 4 महीने का समय रखा, क्योंकि डॉक्टर जो है ट्रीटमेंट करने के लिए ही मरीज को बार बार बुलाता है, उसको शौक नहीं होता। तो हम आपको इसलिए बुलाते हैं, आप आते रहोगे आपकी रुचि बढ़ेगी, आपके शुभ संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, फिर आपकी आप पर रुचि हो जाएगी, आप डटे नहीं डटोगे फिर तक। जब आपके पाप कर्मों का जबर उतर जाएगा फिर आप रोके नहीं रुक सकते, अपने बुलाने की आवश्यकता नहीं, आप आया करोगे, आप इस ज्ञान से परिचित हो जाओगे और आपके अंतःकरण में जमा वो पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर आपको सतलोक आसन बरवाला के बगैर कोई स्थान दिखाई नहीं देगा इस पृथ्वी पर, जहां आप ये सोचो कि ये मेरा अपना है।